रात अब गहराने लगी थी। हवेली के बाहर सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की हल्की आवाजें उस खामोशी को तोड़ रही थीं। अंदर सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अदिति और उसके माता पिता रिश्ता पक्का करके लौट चुके थे। पूरे घर में दिन भर की गहमा गहमी के बाद अब बस खामोश दीवारें बची थीं। श्यामली का दिल अजीब सा भारी था। वो चाहकर भी कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी, न खुशी न गुस्सा, बस एक सन्नाटा था जो उसके भीतर बैठ गया था। लेकिन वो ये नहीं भूली थी कि ये हवेली अब उसकी जिम्मेदारी थी। चाहे हालात कैसे भी हों, वो अब भी इस घर की बहू थी, और हर रात की तरह आज भी सोने से पहले खिड़कियां, दरवाजे सब अच्छे से बंद करना उसका रोज का नियम था। वो आंगन से होते हुए हॉल में पहुंची। वहां हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि कोने की एक खिड़की खुली रह गई थी। अरे ये क्या, ये तो खुली रह गई, तभी तो आज शाम से हवेली में इतने मच्छर हैं, वो बड़बड़ाई। मधु से कहा भी था बंद कर देना, चलो कोई नहीं, मैं ही कर देती हूं। वो खिड़की के पास गई और उसे बंद करने को ही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंक कर पलटी और उसके सामने आर्यन खड़ा था। उसका दिल एक पल को थम सा गया। आर्यन ने बिना कुछ कहे खिड़की बंद की और फिर उसकी तरफ देखा। श्यामली के बाल खुले थे, हवा में उड़ रहे थे। चेहरा हल्की पीली रोशनी में और भी निखर रहा था। उसके होठों के किनारे थरथरा रहे थे और आंखों में हल्के से आंसू झिलमिला रहे थे। आर्यन ने पल भर को कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर उस वक्त जो मासूमियत और दर्द दोनों का मिलाजुला भाव था, उसने आर्यन का दिल कस लिया। श्यामली ने अपनी नजरें झुका ली। आपको कुछ काम था, उसने धीमे से कहा, कोशिश करते हुए कि उसकी आवाज ना कांपे। आर्यन ने धीरे से कहा, खिड़की खुली रह गई थी, देखा तो सोचा बंद कर दूं। श्यामली ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर वो मुस्कान ज्यादा देर नहीं ठहरी। वो खिड़की की तरफ बढ़ी और बोली, अब तो बंद हो गई, तुम जा सकते हो, मैं बाकी देख लूंगी। आर्यन ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर गिरती बालों की लट को धीरे से हटाया। उसकी उंगलियों का स्पर्श जैसे किसी पुरानी याद को जगा गया। श्यामली अचानक पीछे हट गई। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, फिर दीवार से टिक गया। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, मगर आंखों में वही पुराना स्नेह। नाराज हो, उसने धीमे से पूछा। श्यामली ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, नाराज, और मैं? मेरा हक ही क्या है तुमसे नाराज होने का? आर्यन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसके लहजे में वही सच्चाई उतर आई जो हमेशा उसके शब्दों में रहती थी। ऐसा क्यों बोल रही हो श्यामली, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर। श्यामली की आंखें एक पल को उसकी आंखों में अटक गईं। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, वो लड़की अदिति अच्छी है, सबको पसंद आई, तुम्हारे घराने में ठीक रहेगी, सब कहते हैं कि तुम्हारे लिए परफेक्ट है। आर्यन मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान पूरी नहीं थी। हो सकता है, उसने कहा, लेकिन बाकी सबको छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी वो, क्या तुम्हें पसंद आई? श्यामली उसकी आंखों में देखने लगी। वो सवाल जो आर्यन ने पूछा साधारण नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं एक कसक थी, जैसे वो जानबूझकर अपनी तकलीफ को सवाल के पीछे छिपा रहा हो। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मेरी पसंद की कोई अहमियत नहीं आर्यन, और रही बात अदिति की, तो हाँ, वो बहुत अच्छी है, तुम्हें खुश रखेगी। आर्यन ने एक गहरी सांस छोड़ी। शायद, उसने कहा और फिर खामोश हो गया। दोनों के बीच कुछ देर तक बस हवा की आवाज थी जो खिड़की के छोटे से छेद से अंदर आ रही थी। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आई और फिर वो भी थम गई। आर्यन ने एक आखिरी बार श्यामली को देखा, फिर धीमे से कहा, काश तुम भी ऐसा ही सोचतीं जब ये रिश्ता तुम्हारा था। श्यामली की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर गिरा, मगर उसने उसे पहुंचा नहीं, बस खामोश खड़ी रही, जैसे वो आंसू ही उसकी आखिरी प्रतिक्रिया था। आर्यन ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जाते जाते पलटा और हल्के स्वर में बोला, अच्छा होता अगर खिड़कियां बंद करने के साथ साथ दिल भी बंद हो जाते, पर अफसोस ये इतना आसान नहीं होता। श्यामली के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसने बस धीरे से खिड़की की कुंडी घुमाई और वही आवाज टक उस रात का आखिरी सुर बन गई। रत्ना देवी के कमरे में हल्की अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। कमरे की दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। एक में रत्ना देवी अपने पति के साथ थीं और दूसरी में आर्यन बचपन में उनकी गोद में बैठा हंस रहा था। शकुंतला जमीन पर पाट पर बैठी थी, हाथ में सरसों का तेल और धीरे धीरे अपनी माँ के पैरों की मालिश कर रही थी। रत्ना देवी ने थके स्वर में कहा, रहने दे बेटा, रात बहुत हो गई है, अब जा आराम कर ले। शकुंतला ने सिर झुकाकर कहा, अरे नहीं माँ, आपके पांवों में दर्द है, मुझे अच्छा लगता है ये करने में। रत्ना देवी ने हल्की मुस्कान दी, आंखें बंद की और सिर तकिया पर टिका लिया। लेकिन शकुंतला की आंखों में वो मिठास नहीं थी जो उसकी आवाज में थी। अंदर ही अंदर उसके मन में चल रहा था, माँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अगर ये सेवा नहीं करूंगी तो इस हवेली में कोई मेरी ओर देखेगा भी नहीं। हर कोई बस आर्यन और उसके होने वाले रिश्ते में ही उलझा है। इस घर में रहना है तो अच्छाई का दिखावा जरूरी है। उसके हाथ रुकते नहीं थे, लेकिन दिमाग में चल रहा था, जब तक माँ को लगेगा कि मैं वही आज्ञाकारी बेटी हूँ, तब तक मैं इस घर में अपनी जगह बनाए रख सकूंगी। फिर चाहे आर्यन का रिश्ता अदिति से पक्का हो जाए या नहीं, मेरा खेल मैं खुद खेलूंगी। रत्ना देवी की आंखें लग चुकी थी, उनके चेहरे पर शांति थी, मगर शकुंतला की आंखों में वही धीमी सी आग जल रही थी जो हमेशा दूसरों के सो जाने के बाद भड़कती थी। धीरे से उसने तेल की शीशी बंद की, उठी और बत्ती कम कर दी। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, उसने मन ही मन कहा और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया।